ओम शांति। आज सभी भट्टियों का जो आयोजन किया है उसमें सबसे पहले हम माताओं की भट्टी का शुभारंभ आज आप सभी से हो रहा है। इस परिसर में बहुत ही आदि अगर अच्छा है, शुभ है, तो जरूर पीछे वाली भी जो भी सेवाएं हैं, वापटियां हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी तरह से सफल होगी। सब बड़ी अच्छी अनुभूति करेगी। तो आपसे शुरुआत है। अभी आज विशेष माताओं की भट्टी का शुभारंभ जो हो रहा है उसमें खास हमारे बीच आदरणीय सुषमा बेन जी पधारे हैं। बहुत बहुत हम दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपके आगमन से आई है बहार, आपका हम दिल से करते हैं स्वागत बारंबार, स्वागत बारंबार। आपका संक्षिप्त में परिचय देते हुए बताएंगे कि आपका जन्म हिमाचल प्रदेश में हुआ और आपकी पढ़ाई पंजाब में हुई। आपका लौकिक परिवार बाबा के ज्ञान में बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, आपको भी उसमें बड़ी अच्छी इंटरेस्ट की बात थी, जिस कारण आपने आपका जीवन भी इसी कार्य में, इसी सेवा में 1971 से समर्पित किया। और समर्पित करने के बाद भी आपका इतना अच्छा पुरुषार्थ रहा, सेवा रही, भारत के कई अलग अलग राज्यों में भी आपने विशेष सेवा की है, न सिर्फ भारत में लेकिन खास विदेश में भी, जिसमें जर्मनी, फिर और भी बेल्जियम, फ्रांस, ऐसे कई यूरोपियन देशों में भी आपने सेवा का फाउंडेशन डाला, ऐसे ही कहेंगे। शुरू शुरू में वहां जाकर के भी आपने बहुत सेवाएं की। और वर्तमान समय आप राजस्थान जयपुर म्यूजियम जो सेंटर है और सब जोन है, उसके करीब 80 जितने सेवा केंद्रों का आप सुचारू रूप से संचालन भी कर रहे हैं। साथ साथ हमारी जो ब्रह्मा कुमारी संगठन है उसमें भी मैनेजमेंट कमिटी के आप कोर मेंबर भी है, प्रमुख सभ्य भी है, और यहाँ भी कई टीचर्स ट्रेनिंग आदि भी होती, उसमें भी आप प्रशिक्षण देने के लिए भी काफी सालों से सेवाएं दे रहे हैं। अलग अलग विंग्स से, कई विंग्स में आपने बहुत बहुत अच्छी तरह से सेवाएं करके अलग अलग विंग्स के हिसाब से टॉपिक्स पर प्रवचन करके बहुतों को बाबा का परिचय दिया, बाबा के वारिस बच्चे भी बनाए हैं। तो आपके लिए अभी हम यही कहेंगे कि आप अपनी यहाँ आई हुई, दूर दूर से आई हुई माताएं हैं, उन्हों को भी बहुत अच्छा आपका अनुभव युक्त क्लास कराएंगे। जो माताएं भी उमंग में, उत्साह में नाचने लगेगी और बहुत अच्छा दिल से निकलता जाए। तो मैं आपको निवेदन करती हूँ कि आज का आपका जो टॉपिक है उस पर आप जरूर स्पष्ट करेंगे। टॉपिक है शोकेस का सैंपल बनने की विधि, शोकेस का सैंपल बनने की विधि। शोकेस में अच्छे चीजें रखते हैं, परफेक्ट रखते हैं, जिससे लोग आकर्षित भी होते और वो देख करके फिर खरीदारी करते हैं। तो यहाँ भी बाबा के बच्चे भी कैसे बनते हैं, हम सभी को देख करके कि यहाँ आने वाले ऐसे हैं, इतने अच्छे गुणवान हैं, इतने शक्तिशाली हैं, हलचल में भी नहीं आते, टेंशन में भी नहीं आते, तो होता है कि हम भी चलो वहां जाए। तो ऐसे आज का टॉपिक अपने अनुभव से स्पष्ट आप करो और सबको इस टॉपिक से सैंपल बनाओ 100 पीस के। तो बहुत बहुत स्वागत के बाद अभी आप अपना क्लास प्रारंभ करिए। ओम शांति।
ओम शांति। इस वर्ष इस सीजन की भट्टियों का प्रारंभ और उसमें भी सबसे पहले शिव शक्तियों की भट्टी, आप क्या कहेंगे, माताएं हो या शिव शक्तियां हैं, पक्का कीजिए। सैंपल है ना, बाबा के शोकेस के हम सब सैंपल हैं। तो माताएं नहीं, माताएं तो साधारण उस दुनिया में भी बहुत हैं, जो केवल अपने घर बार को संभालती हैं, खाना बनाया, घर संभाला, बच्चों का पालन पोषण किया। अधिकतर माताओं का यही कर्तव्य समझा जाता है। और आजकल फिर कोई कोई माताएं बहनें हैं जो घर गृहस्थी को भी संभालती हैं, साथ साथ कोई ना कोई नौकरी धंधा बिजनेस आदि आदि भी करती हैं। लेकिन जब बाबा कहते हैं कि आप साधारण माताएं नहीं, लेकिन आप कौन है, कौन है, शिव शक्तियां हैं। तो शिव शक्ति माना जो विश्व कल्याण की सेवा में समर्पित है, लगी हुई नहीं है, सेवा के लिए समर्पित है। समर्पित माना सेंटर पर रहना नहीं है। आप कहेंगे कि बहन जी हम तो आपकी तरह सेंटर पर नहीं रहते हैं, तो बाबा ने हमेशा कहा है आपका घर ही क्या है, आपका घर ही सेवा स्थान सेवा केंद्र है। साकार में भी बाबा जब भी माताएं बहनें सामने आती थी तो बाबा कहा करते थे बच्चे अपने घर को भी क्या बनाओ, सेंटर बनाओ। सेंटर पर रहने वाली बहनें भी क्या करती हैं, 2, 4, 10 बहनें एक सेंटर पर रहती हैं और जो लोग आते हैं उनको ज्ञान सुनाकर उनका बुद्धि योग बाबा से जोड़ती हैं। और जो भी कार्य करती हैं तो कहा जाता है ये बाबा की सेवा में है। कोई किचन में खाना बनाएगा तो वो बहन ऐसे नहीं कहती है कि मैं किचन में खाना बनाने की मेरी ड्यूटी है ना, वो कहती है शिव बाबा का भंडारा संभालने की मेरी सेवा है। तो अगर आप सब माताएं भी सबसे पहले ये संकल्प पक्का कीजिए कि हम घर गृहस्थी में रहने वाली माताएं नहीं हैं, लेकिन बाबा द्वारा दिए गए स्थान को संभालने वाली हम कौन है, हम शिव शक्तियां हैं। तो अपना ये जो स्वमान है इस स्वमान को बार बार पक्का कीजिए। अगर सेंटर पर बहनें रहती हैं तो कैसे रहती हैं, अभी आप सब भी मधुबन में आए हैं, कहेंगे हम विशेष आए हैं, किस लिए, भट्टी करने आए हैं। भट्टी माना हम योग तपस्या करने आए हैं। तो देखने में आ भी रहा है, आप भी अपने आसपास देखेंगे, अधिकतर हमारी सब माताओं बहनों ने अपनी वाइट यूनिफॉर्म पहनी हुई है, पहनी हुई है या नहीं पहनी हुई है, कोई कोई को छोड़कर। अधिकतर हमारी माताएं बहनें अपनी वाइट यूनिफॉर्म में हैं, समझते हैं बाबा के घर में आए हैं, तो ये जो हमारी ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, ये बाबा का वरदान है। अगर हम घर गृहस्थी में रहते हैं और कोई सोचते हैं ठीक है घर गृहस्थी का काम करना है, सवेरे सेंटर पर गए, क्लास करके आ गए, फिर वो दुनिया वाली माताओं की तरह ही अपना कोई गाउन पहन लिया, रंगीन कपड़ा पहन लिया, और अभी हम क्या कर रहे हैं, खाना बनाएंगे, कपड़ा धुलाई करेंगे, फिर हमारी बुद्धि उसी प्रकार की हो जाती है। तो शिव शक्ति वो है जिसकी बुद्धि साधारण नहीं लेकिन विशेष बुद्धि, और विशेष बुद्धि कौन सी है, दिव्य बुद्धि। तो बाबा ने हम सबको कौन सा वरदान दिया है, दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। आप सब क्या महसूस करते हैं, आपको दिव्य बुद्धि मिली है? दिव्य बुद्धि माना जिसके हर कर्म में, बोल में अलौकिकता हो, लौकिकता नहीं। अभी आप यहां आए हैं, अलग अलग स्थानों से आए हैं, अगर एक शहर में कहीं 2, 4, 10 सेंटर्स होंगे भी, एक शहर की माताएं बहनें भी आपस में मिलेंगी कि चलो मैं फलाने सेंटर से हूं, मैं फलाने से हूं, तो आप सब क्या समझते हो कि हम बाबा के बच्चे हैं। पहली ये भावना है, मैं बाबा की बच्ची हूं, आप भी बाबा के बच्चे हैं। तो ये जो अंदर की भावना है, बाबा के बच्चे हैं, ये नहीं ये फलाने सेंटर के हैं, फलाने सेंटर के, वो घृणा भाव नहीं कि ये तो अरे ये ऐसे है। जगत माता विश्व कल्याणी जिसके अंदर सर्व के लिए शुभ भाव है, अरे वाह ये भी हमारे शहर से आए हैं, ये फलाने सेंटर की बहन है, फलाने सेंटर की माताएं हैं, कितना आत्मिक स्नेह, आत्मिक अनुभूति, आत्मिक व्यवहार ये आपस में हो, ना कि वो सेंटर ऐसा वो सेंटर ऐसा, फिर तो हम सैंपल ना हुए। जैसे आप बाजार में जाते हैं, कोई भी मार्केट में आप चले जाओ, सब्जी मंडी भी है, तो एक तरफ जहां आपको कपड़ा खरीदना है तो वो कपड़े के दुकानें भी हैं, जूता क्या अलग से दुकानें हैं, ज्वेलरी खरीदनी है वो सब अलग दुकानें हैं। अगर एक जैसी, मान लो ज्वेलरी की 4-5 दुकानें एक लाइन में हैं, कभी आपने देखा कि ज्वेलरी, ज्वेलर तो लड़ सकता है लेकिन ज्वेलरी, मैं सुंदर हूं तू सुंदर नहीं है? तो मैं बाबा के घर का शोरूम, बाबा के शोरूम का मैं एक शोपीस हूं। वो जो दुकानें हैं वो जड़ वस्तुएं हैं, लेकिन बाबा के स्थान, बाबा के सेवा केंद्र, हम सब कौन है, जड़ या चैतन्य, क्या कहेंगे आप, जड़ हैं या चैतन्य? हम चैतन्य हैं जो वाइब्रेशंस फैलाते हैं, भावनाएं फैलाते हैं, एक दूसरे को दृष्टि से निहाल करते हैं। हम जब बाबा के घर में आते हैं, योग सीखते हैं, तो पहले पहले बहनों ने क्या सिखाया कि यहां जब हम योग में बैठते हैं तो खुली आंख बैठते हैं और दृष्टि का आदान प्रदान करते हैं। वो बात अलग है कि किसको आंख खोलकर बैठने का कितना अभ्यास है, आंख खोलकर बैठने का भी अभ्यास चाहिए। कोई तो ऐसा थोड़ी देर, मुश्किल से 2-3 मिनट आंख खोलेंगे फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगी, फिर पता नहीं कहाँ घूमते रहेंगे। और कोई कोई तो फिर आंख बंद हुई नहीं और निंद्रा लोक में गए नहीं। तो ये नहीं करना है, हम बाबा के बच्चे हैं, जागती ज्योत आत्मा है, यही कहते हो ना कि मैं आत्मा जागती ज्योत हूं। अब मान लीजिए मैं यहां बैठी हूं और अभ्यास कर रही हूं, मैं जागती ज्योत आत्मा हूं, और धीरे धीरे जागती ज्योत आत्मा, ये जो दो नेत्र हैं ये अब बंद होने शुरू हो गए, जागती ज्योत आत्मा, तो हुई जागती ज्योत या बुझी हुई ज्योत हुई, तो बुझी हुई ज्योति कहेंगे ना। तो बाबा ने हमें सबसे पहले ये सिखाया है, बच्चे बाबा को याद करो, योग में बैठो। कैसे बैठना है? अधिकतर हम सोचते हैं अच्छा क्लास कराने वाले जो भी हैं, चाहे भाई है या बहन है, या सेंटर्स पर जाते हैं, तो जब तक दीदी मुरली सुनाने नहीं आई है तो हम बस ऐसे सिंपल बैठे हुए हैं, मन में पता नहीं क्या क्या चल रहा है, और फिर कोई आता है मुरली सुनाता है तो हम हाँ अब गीत चला बाबा की याद में, मुरली सुनते हैं रोज, ये हमारा रूटीन है, सेंटर पर आना, मुरली सुनना, चले जाना। फिर मधुबन में आते हैं, क्लासेस सुनते हैं, हर क्लास सुनने के बाद भाई बहने जो भी कोई क्लास कराता है उससे बाहर में मिलते जरूर हैं, और मिलने पर पहला प्रश्न ये पूछते हैं कि भाई जी बहन जी हमें तो ये बताओ, ये मन जो है ना हमारा टिकता नहीं है, एकाग्र नहीं होता है, ये मन को हम कैसे बाबा में लगाएं? तो मैं पूछती हूँ, क्या आपने मन को बाबा में लगाने का कोई पुरुषार्थ किया? किया पुरुषार्थ? बस सोचते हैं लाल लाइट जल रही है हमें ऐसे चुप बैठना है, कोई कोई तो लाल लाइट में आपस में बात करते रहेंगे, कोई कोई तो लाल लाइट में फोन पर भी बात करते रहेंगे। तो हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि क्लास से पहले मुरली से पहले लाल लाइट जला के बैठना है, नहीं। लाल लाइट जलाने का अर्थ है, ये लाल लाइट हमें अपने घर की याद दिलाती है, हमारा परम धाम भी एकदम ऐसा, मैं आत्मा भी ज्योति स्वरूप हूं, परम धाम भी एकदम जहां चारों ओर गोल्डन रेड प्रकाश ही प्रकाश है, मैं आत्मा परम धाम में बैठी। अब अगर मैं अर्थ सहित बैठी तो आप देखो आते ही मेरा योग लगेगा, रेड लाइट है, सब साइलेंस में बैठे हैं, परम धाम का क्या परिचय देते हैं, यही कहते हैं ना वहां शरीर नहीं है, हम अशरीरी आत्मा, एकदम साइलेंस। अब शरीर में रहते हुए ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा यहां मस्तक के बीच में हूं, और कैसी हूं, एकदम साइलेंट। तो जब हम योग में बैठते हैं तो केवल बैठना नहीं है, ऐसे करके सोना नहीं है, इधर उधर देखना नहीं है, अपना ही कुछ लिखना नहीं है, बातें नहीं करनी है, लेकिन ऐसा बैठे एकदम नशे में बैठे, खुशी में बैठे, सैंपल है ना। आपने मम्मा बाबा को नहीं देखा, हम लोगों ने देखा, लेकिन बाबा का चित्र, मम्मा का चित्र आपके सामने है, आप देखिए बाबा हमेशा ऐसे नहीं, कोई फोटो बाबा की इस पोज में खींची हुई है। बाबा हमेशा जब क्लास में आकर बैठते थे या वैसे भी एकदम ऐसा सीधा, और बाबा के नेत्र ऐसे खुले हैं। तो आप सब भी शिव शक्तियां विश्व कल्याणकारी हैं, तो विश्व कल्याणकारी शिव शक्ति का काम क्या होगा? सारे विश्व को लाइट और माइट देना। जहां हम रहते हैं, जो जिसको आप घर कहते हैं, अब उसको घर नहीं कहना, वो हमारा ऑफिस है। मधुबन हमारा घर है, ऑफिस में हम सेवा करने, काम करने जाते हैं। तो याद कहां की रहेगी? या मधुबन या आत्मा का घर परम धाम। जहां हम सेवा करने गए हैं, हम विश्व को तो योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपने सेवा स्थान को भी योगदान दे रहे हैं। अपने अंदर ये भावना पैदा करनी है। अब कई बार कई भाई बहन हमें कहते हैं कि ये समस्या आई, फलानी समस्या आई, मैंने ना रोज सवेरे शाम एक घंटा बैठकर योग किया, योगदान दिया। योगदान का अर्थ क्या है? क्या बस ऐसे बैठ जाना है, बाबा ये समस्या समाप्त हो जाए, बाबा ये बीमारी ठीक हो जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक होगी। ध्यान से सुनना इस बात को। लेकिन समस्या का हल कब होगा? जब मेरे अंदर की भावनाएं बदल जाएंगी। तो ये देखना है, मैं योग में आज एक घंटा बैठी, दो घंटा बैठी, चार घंटा बैठी, आधा घंटा बैठी, मेरे अंदर श्रेष्ठ भावनाएं पैदा हुई। चाहे परिवार के सदस्य हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, कैसे भी हैं, मेरे अंदर ये भावना पैदा हुई कि ये सब बाबा के बच्चे हैं। हम यही कहते हैं ना, ये सारी दुनिया कौन है? शिव बाबा के ही तो बच्चे हैं। तो जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो कौन है? वो शिव बाबा के बच्चे हैं या नहीं है? क्या कहेंगे आप सब, हाँ या ना? या कहेंगे नहीं, मेरा जो पड़ोसी है ना, ये बहुत खराब है, इसलिए ये बाबा का बच्चा नहीं है, बाकी सब बाबा के बच्चे हैं? ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, कैसा भी हो पड़ोसी। हमारे अंदर ये भावना, ये व्यवहार, ये मेरा पड़ोसी, ये भी बाबा का बच्चा है, आप करके देखिए, आपका पड़ोसी भी बदल जाएगा। घर में बच्चे हैं, बहु बेटे हैं, सवेरे उठते ही ये भावना पक्की कीजिए, ये सब बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। एक घंटा नहीं, एक घंटा कहेंगे बहुत अच्छे हैं, फिर बाकी 23 घंटे क्या कहेंगे? बहुत खराब है, ये तो नहीं कहेंगे ना। सारा दिन यही धुन रहे, बहू है, बेटा है, बेटी है, सासू है, कोई भी है, अड़ोसी है, पड़ोसी, ये सब भगवान के बच्चे, कितने मीठे हैं, कितने अच्छे। क्योंकि मैं बाबा के घर का कौन हूं? शो पीस हूं। कैसा शो पीस हूं? ये हम अपना अनुभव सुनाएं और सुना सकें कि मैंने सबके लिए, केवल पड़ोसी के लिए, बहू बेटे के लिए नहीं, सबके लिए भावना रखी, ये सब बहुत अच्छे भगवान के बच्चे हैं, और उन सब का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया। तो निरंतर अभ्यास चाहिए। बाबा हमको कहता है, बच्चे पूरे विश्व को योगदान दो। अगर कहीं भी जरा सा हमारा बनती नहीं होगी तो वहां अटक जाएंगे ना। योगदान तो तब जाएगा जब हम बेहद में होंगे। तो हम बाबा के बच्चों को, कईयों को सेवा का बहुत शौक होता है ना, कहते हैं हम वहां सेवा करें वहां सेवा करें। सेंटर्स पर भी हम देखते हैं कई माताएं बहनें कई भाई इधर उधर भागते हैं सेवा के लिए, उनको देखो सारा समय लगे हुए हैं अथक को करके। उस अथक सेवा की सफलता का आधार भी यही है जब मेरी भावना सबके लिए शुभ, ये भावना नहीं मैं बहुत सेवा करती हूं मैं बहुत अच्छा ज्ञान सुनाती हूं देखो मैं फलाने को लाई। और वो जो जिसको लेके आते हैं वो भी कहता है ये बहन जी ना मेरा गुरु है, इन्होंने मुझे कोर्स कराया, इसने मुझे बाबा का घर दिखाया, हम उसमें बहुत खुश। ये देखो ये दो भाई बहन है ना, इनको मैं लाई थी, परिचय भी यही कराएंगे, इनको मैं बाबा के घर लाई थी, ये बाबा के बन गए। अब बताइए ये दो को तो मैं लाई थी, फिर बाकियों को आप क्यों नहीं लेके आते? तो बाबा के शोकेस का शो पीस वह भाई बहने हैं, चाहे भाई हो चाहे बहने हो, जिन्होंने ये पक्का कर लिया है कि मैं बाबा का सैंपल सदा बेहद में रहने वाला हूं, सदा ही बाबा की याद में रहने वाला हूं। ऐसा नहीं अचानक कोई आ जाए और देखे ये बहन जी या भाई जी क्या कर रहे हैं, ये तो लगे हुए हैं मोबाइल में। आजकल हमारी माताओं बहनों का भी अधिक समय कहां जाता है, कहां जाता है बताइए, मोबाइल में। कहते हैं हम फलाने की क्लास सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, कहते हैं ना। अब वो मोबाइल तो चल जाता है, क्लास तो सुनते हैं, ध्यान कहां होता है? सब्जी को छोंक लग रही है, चाय बना रहे हैं, मोबाइल चल रहा है, कौन सुन रहा है? वास्तव में मैं वो सैंपल हूं, द बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छा बाबा का स्टूडेंट हूं। हर बात में मुझे सैंपल बनना है ना, आज्ञाकारी बच्चा हूं, आज्ञाकारी बाबा का ईमानदार स्टूडेंट हूं। पढ़ते हैं तो इतना ध्यान से पढ़ो, मोबाइल से नहीं, अपने हाथ में मुरली लेकर पढ़ो। जब हाथ में मुरली लेकर पढ़ते हैं तो मेरी नजर मुरली पर, ध्यान मुरली पर, तो अपने आप एकाग्रता बनेगी या नहीं बनेगी? तो मैं बाबा का सच्चा ईमानदार बच्चा हूं, मुझे नंबर वन बनना है। यहां बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, बच्चे तुम नर नारायण नारी श्री लक्ष्मी बनने आए हो। आप में से बहुत सी माताएं बहनें होंगी जो लास्ट ईयर भी भट्टी में आई होंगी, उससे पहले भी आई होंगी, इस बार भी आई हैं। अपने को देखो, हमारे में कोई परिवर्तन आया है भट्टी के बाद? ऐसा कोई अनुभव अपना देखिए कि मैं जो पिछले साल थी अब नहीं हूं, और अब जो हूं मैं आगे नहीं हूं। ऐसे नहीं खाली आ गए चलो मधुबन में चलते हैं, इस बहाने थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, घूम भी आते हैं, थोड़ा योग भी कर लेते हैं, थोड़ा ज्ञान भी सुन लेते हैं, हम इसलिए नहीं आए हैं। बाबा मुझे लक्ष्मी नारायण बनाने आया है, तो लक्ष्मी नारायण का फोटो रखो सामने, इसमें और मुझ में अभी कितना अंतर है। इस बार की आपकी ये भट्टी विशेष भट्टी है। आप कहेंगे क्यों? आगे हम कहते थे ये कलयुग बदलेगा, और हम सब सत्ययुग में चलेंगे। बाबा हमें सत्ययुग में ले चलने आए हैं। अब हम क्या कहेंगे, कलयुग बदलेगा, विनाश होगा या विनाश शुरू हो गया है? माताएं क्या कहते हैं, दुनिया में रहते हो ना, दुनिया के हालात देखो कैसे हैं। आप प्रकृति को देख लीजिए, आप मनुष्य को देख लीजिए, आप वातावरण को देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। बाहर की बात छोड़ो, आजकल मनुष्य, कोई भी माताएं बहने भाई, अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। राइट है या रॉन्ग है? घर में भी सुरक्षित नहीं है। इतनी तमो प्रधान ये दुनिया बन चुकी है, तो अब ज्यादा समय नहीं है। दुनिया बदलेगी नहीं, दुनिया बदल रही है, उस वो प्रोसेस चालू हो चुका है, क्योंकि स्थापना का कार्य 1936 से चल रहा है। और बाबा के देखो कितने बच्चे, आप अपने को भी देखिए, आप में से कई होंगे जो 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, 15 साल से चल रहे हैं, हो सकता है कोई 20-22 साल वाले भी हों। कहेंगे जब हम आए थे तो थोड़े से बाबा के बच्चे थे, अभी तो देखो कितनी भीड़ है। तो एक तरफ भगवान का कार्य भी पूरा हो रहा है, दूसरी तरफ ये कलयुगी दुनिया का विनाश प्रारंभ हो चुका है। अब जो समय है, अगर हम अभी भी गफलत करेंगे तो फिर प्राप्ति कब करेंगे? इसलिए सैंपल बनने के लिए हमें सबसे पहले पक्का करना है, समस्याएं तो बहुत हैं और बहुत आएंगी। कोई भी ये नहीं कहना मेरे घर में ये समस्या है, फलाना मेरे घर में एक बुजुर्ग है, उसकी सेवा की बात है, मेरा बेटा ऐसा है, भाई ऐसा है, पति ऐसा है, ये बिल्कुल अभी से ही स्वाहा, ये सब ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मेरे कर्मों के हिसाब किताब है ना, मुझे सब मेरे कर्मों के हिसाब किताब से मिले हुए हैं। अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से, मान लो कोई आके कहता है बहन जी मैं तो बहुत बीमार रहती हूं, और मैं उसको कहूं तेरे कर्मों का हिसाब किताब है, उसको अच्छा लगेगा? कहेंगे लो बहन जी ने तो सीधा ही कह दिया, तेरे कर्मों का हिसाब किताब है, मुझे थोड़ी सी तसल्ली भी नहीं दी। लेकिन अंदर में हम समझते हैं कर्मों का हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, हमको ज्ञान मिला है, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब चुक्त हो रहा है। एक विधि है जो हम ये अड़चने देख रहे हैं, दूसरी विधि ये है कि अब मुझे श्वासों श्वास बाबा को याद करना है। कौन कौन समझते हैं हम श्वासों श्वास बाबा को याद कर सकते हैं? कर सकते हैं, उठाओ हाथ, देखें। कई तो सोच रहे हैं कर तो दें फिर हो ना हो, कोई बात नहीं है, है ये मुश्किल काम, लेकिन अब यही हमें पक्का करना है। कितनी भी मेरे आगे समस्याएं हों, कितनी भी बातें हों, भक्ति में जैसे कहते हैं ना, आप ये मंत्र फेरिए आपका काम हो जाएगा। कोई भी पंडित जी कहते हैं आप रोज 10 माला फेरना, आप 2 महीना 3 महीना फेरो आपका काम हो जाएगा। अब बाबा भी कहते हैं बच्चे श्वासों श्वास मुझे याद करो, तो आप हर प्रकार की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। अब वो समाना भी गया, 2 घंटा योग लगाओ, 6 घंटा योग लगाओ, 8 घंटा योग लगाओ, बहुत बार सुना, बहुत बार कोशिश की, थोड़ा समय करते हैं फिर छूट जाता है। तो अब 2 घंटा 4 घंटा नहीं करना है, तो अब क्या करना है, क्या करना है, श्वासोश्वास करना है। आसान है मुश्किल है? 2 घंटा 4 घंटा आसान था या श्वासोश्वास करना आसान है? कौन सा आसान है? जो कहते हैं 2-4 घंटा तो फिर भी आसान था वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो कहते हैं श्वासोश्वास याद करना आसान है, अच्छा होशियार है सब माताएं बहनें, तो अपने लिए ताली बजा लो, सबने हाथ उठाया है। तो अब हमें यही करना है। आप यहां भी आए हैं ना, ऐसे नहीं क्लास पूरा हुआ चल बहन चल फलानी बात करते चले जाएं, चल जल्दी जल्दी वहां भीड़ होगी फिर खाना नहीं मिलेगा, चल जल्दी जल्दी चल फिर जल्दी क्लास में आएंगे सीट नहीं मिलेगी। आपको लास्ट में सीट मिले, हर्जा नहीं। बात तो मन की एकाग्रता की है ना, आगे बैठे भी मन एकाग्र नहीं है, यहां भी बैठ के मैं यही देख रही हूं कौन आया कौन नहीं आया। तो इस बार इस भट्टी में हमें यही अभ्यास करना है, कोई भी आए कोई भी जाए, मुझे जहां स्थान मिला जहां जगह मिली बैठ के, और ये देखना है मैं बस बाबा को देख रही हूं। यही कह लीजिए अपने मन में, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा के साथ हूं, मैं बाबा के साथ हूं, मैं बाबा के साथ हूं। निरंतर श्वासों श्वास सिमर सिमर सुख पाओ, ये सिमरण चलता जाए, ताकि हम अनुभव से सबको कह सके, सैंपल है ना, कि भगवान को श्वासों श्वास याद करने से जीवन की समस्याएं हल हो जाती हैं, पूछने से नहीं होंगी। डॉक्टर ने दवाई लिख दी, मैंने खाई भी, परहेज नहीं किया, असर नहीं करेगी, परहेज जरूरी है। इसका परहेज ये है, बाबा से शक्तियां कैसे लें, बाबा के शोकेस का मैं शोपीस कैसे बनूं, ये परहेज है। श्वासों श्वास बाबा को याद करना है, हर श्वास में बाबा का सिमरण करना है। अब आप घर से तो आ गए, यहां से उठ के बाहर जाते हैं फिर फोन पे लग जाते हैं, अरे फलाना ठीक है या नहीं, फलाने को ये कह देना, मैं ये चीज रखना भूल गई, तू ध्यान से रख लेना, कोई मतलब नहीं है। हम बाबा के समझदार बच्चे हैं, पहले ही कहा ना, सैंपल माना जिसको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, पक्का कर लीजिए, उठते बैठते सवेरे आंख खुलते दिव्य बुद्धि दाता शिव बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, मैं दिव्य बुद्धि से संपन्न आत्मा हूं। पूछते हो ना कैसे योग लगाएं, शिव बाबा का दिव्य बुद्धि का वरदान मुझ आत्मा को मिला है, मैं दिव्य बुद्धि संपन्न आत्मा हूं। बस दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कहां जाएगी, क्या देखेगी, बातें करेगी, तेरी मेरी करेगी, आलस में रहेगी, टाइम वेस्ट करेगी, कोई आकर्षण होगा, कुछ नहीं। मैं दिव्य बुद्धि वाली आत्मा दिव्य बुद्धि रूपी आंख से केवल केवल एक बाबा को देख रही हूं, यही पक्का कर लीजिए। मैं अति सूक्ष्म आत्मा बस एक सर्वशक्तिवान बाबा को देख रही, बाबा के कमरे में भी बैठो बस बाबा मैं आपके सामने हूं। अंदर में अनुभूति कीजिए, यह ना पूछो दीदी बाबा को कैसे याद करें, कैसे याद करें, नहीं हम हैं ही याद में, बस मैं बाबा को देख रही हूं, बाबा मुझे देख रहे, अन्य कोई भी संकल्प नहीं, अन्य कोई भी बात नहीं। अगर हम समस्याओं में उलझे हुए हैं तो फिर बाबा तो याद ही नहीं, बाबा क्या करूं, हमारा धंधा नहीं चल रहा है, बाबा बेटे की नौकरी नहीं लगी है, बाबा ये करने नहीं आया। कई बार मुरली में कहता है ना, बच्चे मैं ये करने नहीं आया हूं, वो तो पतित पावन है, वो हम बच्चों को पावन बनाने आया है, हमें मनुष्य से देवता बनाने आया है। और उसके लिए कहता है, आजकल की ये पिछले 7-8 दिनों की मुरलियां निकाल के दोबारा पढ़िए, बच्चे अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझने का अभ्यास करो। तो क्या करना है, यही पक्का करना है, मैं शुद्ध आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, शिव बाबा मुझे देख रहा है। किस किस को देख रहा है बाबा? पक्का पक्का सबको देख रहा है बाबा? अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। हम बहुत बार देखते हैं, जब क्लास पूरा होता है ना, उठ के बाहर जाते हैं, कई भाई बहन आके कहेंगे दीदी मुझे दृष्टि दो। दृष्टि देने की चीज नहीं है, दृष्टि दे के हम क्या करते हैं, वाइब्रेशंस ही तो लेते हैं ना। तो आप कहेंगे मुझे अब दृष्टि दो, तो ऐसे तो नहीं दी जाएगी ना। लेकिन दृष्टि लेने के लिए, अब मैं कहती हूं मुझे प्यास लगी है, माता जी या बहन जी मुझे पानी पिला दीजिए, वो कह रहे हैं कि पानी तो है पर बहन जी गिलास नहीं है, पानी कैसे पिलाऊं? तो क्या करेंगे, आगे क्या करते थे, आजकल तो बोतल उठा के ऊपर से सीधा गुड़गुड़ कर लेते हैं। आगे लोग क्या करते थे, मटके से पानी निकाल के यूं हाथ से भी पी लेते थे। तो कोई ना कोई विधि निकालेंगे ना। तो जितना हम स्वयं योगयुक्त होंगे, अब आप ये समझो मुझे शिव बाबा हर घड़ी दृष्टि दे रहा है। अभी आप सुन रहे हो ना, बाबा आप सबको दृष्टि दे रहे हैं, अनुभव कीजिए। आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी यहां रहेंगे, एक सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करना, यही महसूस कीजिए मुझे बाबा दृष्टि दे रहा है, मैं बाबा की दृष्टि ले रही हूं, तो मैं बाबा के घर का, बाबा के यज्ञ का एक द बेस्ट सैंपल आत्मा हूं। बस अपने को इसी में बिजी रखना है। बाबा दृष्टि दे रहा है, बाबा की शक्तियां आ रही हैं। अगर हम इधर उधर बिजी हो गए, फोन में लग गए, आपस में बातों में लग गए, तो कनेक्शन कट हो जाएगा, डिस्कनेक्ट, और डिस्कनेक्ट होते ही फिर शक्तियां नहीं मिलेंगी, फिर और बातें बुद्धि में आएंगी। तो योग का अर्थ ही है अपने मन बुद्धि को एकदम साफ, एकदम स्वच्छ। जो कचरा भरा हुआ है ना, 84 जन्मों की तो बात छोड़िए, इस जन्म का ही कितना कचरा भरा हुआ है, इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, कैसे योग लगेगा? तो अपने मन और बुद्धि को एकदम स्वच्छ करने के लिए बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है। आपको आएंगी और बातें, परिवार की भी आएंगी, समस्याएं भी आएंगी, बच्चों की बातें बुद्धि में आएंगी, लेकिन अपने को आप खुद डायरेक्शन दीजिए, ठीक है बच्चा ऐसा है, बहू ऐसी है, पड़ोसी ऐसा है, फलाना ऐसा है, धंधा नहीं है, ठीक है, बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, अभी तो मुझे दृष्टि है। चलते फिरते उठते बैठते मैं बाबा की नजरों में हूं। सोचिए कितना ऊंचा भाग्य है, कितना बड़ा वरदान कि मैं भगवान की नजरों में हूं। कौन कौन है भगवान की नजरों में, इस अभ्यास को पक्का कीजिए। ये मत पूछिए बहन जी योग कैसे लगाना है, यही योग है, मैं भगवान की नजरों में हूं। शिव बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है, शिव बाबा मेरा है। आपको जो बात याद रहती है ये भी ना, फिर ये करें तो ठीक है, ये नहीं, आपको ये करना है, शिव बाबा के सामने मैं हूं बस। अब आप इसको किसी भी अपनी भाषा में अपने भाव से आप कैसे भी कह लीजिए, लेकिन भाव ये है मैं बाबा की हूं, बाबा के सामने हूं। और सब समस्याएं, सब बीमारियां, सब बातें हैं या समाप्त, क्या कहेंगे, सब चीजें समाप्त। हम जीते जी मर चुके हैं ना, उस दुनिया में भी कहते हैं आप मोए तो मर गई दुनिया, हम तो सारी दुनिया से मर चुके हैं, मर चुके हैं, कोई स्थूल रूप में नहीं मरना है, लेकिन मन बुद्धि से बस बाबा बाबा बाबा। तो बाबा मेरा है, मैं बाबा की हूं, ये पक्का करेंगे तो हम सैंपल बनेंगे। हमारे मम्मा बाबा ने भी यही किया, साकार में बाबा को देखा, जब देखो बाबा एकदम पावरफुल स्थिति में, कोई भी बाबा के सामने आता था। आज भी अगर जिन्होंने दादियों को देखा होगा, हम जब दादियों से मिलते थे तो पहले हमें दादियां क्या करती थी, दृष्टि देती थी, हम जाते थे दृष्टि देते थे, और हम क्या करते हैं, हम मिलते हैं, हम कहते हैं हेलो, ओम शांति, अरे कैसे हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दियो, फटाफट रिकॉर्डिंग चालू, किसी को उलाहना देंगे, किसी से कोई स्वार्थ होगा, अरे अच्छा हुआ तुम मिल गई, मुझे तुमसे ये लेना है, ये नहीं करना है। अपने अंदर बहुत शांति, बहुत धैर्य, अगर ये दो चीजें हमारे अंदर आ जाए, दो विशेषताएं, दो क्वालिटीज, कौन सी, धैर्यता, धैर्यवत, चाहे फिर आप कहीं भी हैं, यहां आके बैठते हैं या भोजन करने जाते हैं, भीड़ है, हम शांति से खड़े हैं, योग युक्त होके आगे वाले ले लेंगे तो मैं भी ले लूंगी। तो अभी जो आप चार पांच दिन भट्टी में रहेंगे, तो मुझे साइलेंस में रहना है, बाबा से शक्ति लेनी है, बाबा से दृष्टि लेनी है। मैं आपको मौन नहीं कहूंगी कि आप मौन में रहिए, तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाती है, लेकिन हर घड़ी बाबा मुझे शक्ति दे रहे हैं, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। किस किस को चाहिए बाबा की दृष्टि, सबको चाहिए ना, तो अब क्या करेंगे, लेंगे, लेने की विधि ये है, जो जितना साइलेंस में रहेगा बाबा उसको दृष्टि देगा, तो हम बाबा के घर के सैंपल बनेंगे। तब हम केवल अभी की बात नहीं है, नई दुनिया के भी सैंपल बनेंगे। किसी को भी आप कहेंगे ना, हम योग सीखते हैं, हम मधुबन गए थे, हम बाबा के घर में जाते हैं, वो कहेंगे हाँ आप में ना थोड़ा कुछ औरों से अलग दिखाई देता है, आप लोग कितना शांति से रहते हैं, घर में भी शांति से, यहाँ भी शांति से, व्यवहार में भी शांति, बस मैं शांति दाता की बच्ची। ठीक है, बनेंगे सब सैंपल, बनेंगे या बन गए, ताली नहीं बजानी है, ताली बजा कर काम पूरा नहीं करना है, पक्का कीजिए। मैं बाबा के घर का सैंपल हूं, बाबा मुझे देख रहा है, मैं बाबा को देख रही हूं। ओम शांति। चलो अभी बाबा की याद में बैठेंगे, ऐसा पावरफुल होके, कुर्सियों का ऐसे पीछे सहारा लगा के ना बैठो, अलर्ट होके बैठो। हो सकता है कई आज आए होंगे, थोड़ी थकान होगी, पर जब बैठे ही हैं तो थकान काहे की, बैठे ही हैं कमाई करने के लिए, बैठे ही हैं अपनी झोली भरने के लिए। तो अपनी झोली भरिए, बाबा शक्तियां लुटा रहा है, बाबा प्यार लुटा रहा है। अपनी झोली, बुद्धि रूपी झोली को बाबा की शक्तियों से, गुणों से, वरदानों से भरें। बाबा वरदाता, भाग्य विधाता, मुझ आत्मा को शक्ति दे देकर शक्तिशाली बना रहे हैं। बाबा वरदानों से मेरी झोली भर रहे हैं। मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा है। शक्तिशाली याद में बैठे।
तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में। दुनिया के आकर्षणों में, दुनिया के आकर्षणों में अब हमें ना रहना है, अब हमें ना रहना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। हमने लिया संकल्प आज अपने मन में बनना तपस्वी हमें इस जीवन में। बाबा की शुभ आशाओं को, बाबा की शुभ आशाओं को अब हमें पूर्ण करना है, अब हमें पूर्ण करना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। प्रभु के नूर है हम, आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। प्रभु के नूर है हम, आत्मा के हूर हैं, हमें इस जहां को पावन करना जरूर है। वसुंधरा पर दिव्य रूप में, वसुंधरा पर दिव्य रूप में फिर से हमें उतरना है, फिर से हमें उतरना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूरत साथी अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही।